तपस्वी वही जिनके अंग अंग हो शीतल मुख मधुरस छलकाए नैन सुधा वर्षाए मुख मधुरस।
ओम शांति। सभी बाबा के प्यारे घर शांति वन में प्यारी दादी जी के स्मृति दिवस के अवसर पर भट्टी करने के लिए पधारे हैं। ये विशेष सौभाग्य आप भाई बहनों को मिला है, तो ज़रूर इन चार पांच दिनों का पूरा पूरा लाभ लेंगे। जैसे दादी ने अपनी स्थिति को बनाया अचल अडोल स्थिर एकरस कर्मातीत स्थिति, दादी की हमने प्रत्यक्ष देखी। चाहे इतने बड़े यज्ञ को दादी संभालते रहे, लेकिन स्वपुरुषार्थ में भी उतना ही अटेंशन दादी जी का रहा। ऐसे ही क्योंकि अभी हम विशेष दादी के स्मृति दिवस के अवसर पर आए हैं, तो दादी ने जैसे अपने को बाप समान बनाया, ऐसे हमें भी स्वयं को दादी समान स्थिति का अनुभव करते हुए बाप समान बनाना है। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत स्मृतियां दिलाई हैं, यही हमारा पुरुषार्थ है कि हम उन स्मृतियों के स्वरूप बने। हम तिलकधारी हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन हैं और ताजधारी बच्चे हैं। तो जब कहते हैं तिलक धारी हैं, तो कौन सा तिलक लगा हुआ है? वो मंदिर वाला तिलक नहीं या बिंदी वाला तिलक भी नहीं, लेकिन आत्मिक स्मृति का तिलक। सबसे पहला तिलक बाबा ने जो हम बच्चों को लगाया है, आज की मुरली में भी बाबा ने ये बात कही। तो ये आत्मिक स्मृति का तिलक हमारा मिट तो नहीं जाता है। जैसे वो तिलक लगाते हैं ना, तो कई बार अपने आप हाथ चला जाता है, तो वो तिलक मिट जाता है। ये तिलक आत्मिक स्मृति का ये भी सदा लगा रहे, सदा आत्मा की ज्योति चलती रहे, जागती ज्योत आत्मा रहे, उसके लिए हमें अटेंशन का ध्रत जरूर डालना है। ये नहीं कि सिर्फ जब हम योग करते हैं तब हमें आत्मिक स्मृति रहती है, वो भी पूरा समय नहीं रहती, और बाकी सारा दिन जब अपने कार्य व्यवहार में आते हैं तो हम देह अभिमान में आ जाते हैं या कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। नहीं, सदा आत्मा का सितारा चमकता रहे, बाबा ने दादियों ने ये अभ्यास अपने 14 साल की भट्टी में निरंतर किया है। दादियां कई बार सुनाती हैं कि हमारी मुख्य तपस्या ही यही होती थी, ये समझा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इसी एक बात को लेकर के हम सारा दिन उस अनुभव में रहते थे, और वो सचमुच जैसे कि शांति का आज भी बाबा ने क्या कहा, अंतर्मुक्ता की गुफा में जाना है। अंतर्मुखी बन जाओ, अगर विकारों का अंश वंश भी समाप्त करना है तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होना माना अंतर्मुखता की गुफा में बैठना, और उस अंतर्मुखता से ही हम न्यारे और प्यारे बनते हैं। फिर जब चाहे हम इस संसार से, कर्मेंद्रियों से, संबंधों से न्यारे हो जाएं, और जब चाहे हम कर्म में आ जाएं और अपना कर्म कर लें, वो भी कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे। जैसे कछुए का मिसाल दिया बाबा ने आज की मुरली में, कछुआ कैसे करता है, हम अष्ट शक्तियों में बताते हैं, जब चाहे अपनी कर्मेंद्रियों को यूज करता है और जब चाहे वो अपने आप को पूरी तरह से समेट लेता है। ऐसे ही कर्मेंद्रियों में आना है, कर्म करना है, निमित्त मात्र आत्मा ने कर्म किया और जैसे ही कर्म समाप्त हुआ फिर से न्यारे होकर अपनी अंतर्मुखी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए। जब ये स्थिति बनेगी तब चलते फिरते म्यूजियम बनेंगे। म्यूजियम बनने का मतलब है चैतन्य म्यूजियम। बाबा कहता है आपको ज्ञान नहीं सुनाना पड़ेगा। देही अभिमानी स्थिति रूहानियत लाती है। आपकी रूहानियत, आपकी पवित्र दृष्टि वृत्ति, आत्मिक दृष्टि शुद्ध दृष्टि वृत्ति है, तो जिन भी आत्माओं के आप संपर्क में आएंगे वो महसूस करेंगे इस बात को, ये हमसे न्यारे हैं, हमारे जैसा इनका देखना चलना नहीं है। तो वो न्यारापन उन आत्माओं को स्वतः ही बाबा के समीप लाने के निमित्त बनेगा, जिसको बाबा कहता है चलन और चेहरे के द्वारा सेवा। फिर उसके साथ साथ जो तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं आज के वातावरण के, क्योंकि हम सभी बाहर दुनिया में रहते हैं तो वो वाइब्रेशंस हम सबको फेस तो करने ही पड़ते हैं, तो आत्मिक स्थिति वो पावरफुल स्थिति है कि उन वाइब्रेशंस का प्रभाव हम तक नहीं आएगा। हम अपनी वृत्ति से वायुमंडल को चेंज करेंगे। तो बाबा कहता है आप पावन दुनिया बनाने वाले हो, तो पावन दुनिया कैसे बनाने वाले हैं, तमो प्रधान वातावरण को सतो प्रधान बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। और इसीलिए बाबा कहता है हर घंटे कम से कम एक मिनट भी, हम जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं पूरी तरह से अशरीरी हो जाएं। आज भी बाबा ने कहा ना, जैसे बिल्कुल ये सृष्टि है ही नहीं ऐसा अनुभव हो। इस देह से न्यारे, निराकारी, अशरीरी, निर्विकारी स्थिति में बार बार ये अभ्यास चाहिए, तब वो आत्मिक स्मृति का तिलक हमारा लगा रहेगा। और यही कारण है बाबा रोज हमें मुरली में अंडरलाइन कराते हैं, पहली चार पांच लाइन इसी पर होती है। देही अभिमानी होकर बैठे हैं, किस स्थिति में मुरली सुन रहे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं। और दूसरा, बाबा ने हमें तख्त नशीन बनाया है, दिल तख्त नशीन, अकाल तख्त नशीन। तो हम सब बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। बाबा का दिल तख्त इतना बड़ा है कि सारी दुनिया की आत्माएं भी अगर उस पर बैठना चाहें तो बैठ सकती हैं। जैसे आज की दुनिया के तख्त तो कैसे होते हैं, तख्त तो है ही नहीं, कुर्सी है, और वो कुर्सी पे भी खींचा तान होती है, कोई बैठने नहीं देता है। लेकिन बाबा का दिल तख्त इतना बड़ा है कि एक साथ सब बैठ सकते हैं, पर वो बैठने के लिए शर्त है। हम दिल तख्त नशीन कब अनुभव कर सकते हैं? कुछ विशेष धारणाएं हैं उसके लिए। ऐसे तो हम कहते हैं बाबा हमारे दिल में हैं और हम बाबा के दिल में हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं? सभी कहते हैं मेरा बाबा है, लेकिन वो महसूसता जिससे जिगरी प्यार होता है, दिल में होना माना वो जिगरी प्यार होता है, तो स्वतः ही याद नहीं करना पड़ता है, याद आती है। सही कहेंगे, वो अनुभूति। तो उसके लिए बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहब राजी, जो विशेष धारणाएं होनी चाहिए, सच्चे दिल पर साहब राजी है। तो मेरी सच्चाई सफाई कितनी है, ऑनेस्टी कितनी है, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, बाबा के प्रति। दो तीन दिन से मुरली के वरदान में ये आ रहा था ऑनेस्टी के ऊपर। तो यहां भी बाबा को वही बच्चे पसंद हैं जिनमें दुनियावी चतुराई, हेरा फेरी, छल कपट ये सब नहीं है। इसलिए कहते हैं वो भोलानाथ है, जो भोले बच्चे हैं उन पर सहज राजी हो जाता है। उसने किसको चुना इस दुनिया में से, हाँ कल परसों की मुरली में था, हाँ कितनी साधारण माताएं बैठी हैं, और अगर कोई बड़े आदमी देखेंगे यहाँ साधारण माताएं बैठी हैं तो वो यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे, वो किन सभाओं में जाएंगे। याद होगा तो शायद कल या परसों की मुरली में बाबा ने ये बात कही थी। तो किसको बाबा ने चुना, हम बच्चों को, और क्यों चुना? ऐसी कोई विशेषता हमारे अंदर है जो हम भगवान को पसंद आ गए और भगवान हमें पसंद आ गया। लेकिन फिर भी आज के कलयुगी वातावरण में रहते हैं, कुछ आत्मा के पूर्व जन्मों के संस्कार आए हैं ना, रावण के संस्कार भी तो आ गए हैं 63 जन्मों से। तो समय कैसा है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, ये वाला समय है। तो बिना झूठ के तो दुनिया चलती नहीं है, क्या कहेंगे। तो हम भी ब्राह्मण बनने के बाद कई बार जाने अनजाने झूठ का सहारा लेने लगते हैं और बाबा से दूर होने लगते हैं, यानी बाबा के दिल तक से फिर उतर जाते हैं। और कई बार हम सोचते हैं बाबा तो कहता है ना कि मैं सबके दिलों को नहीं जानता हूँ, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। भले बाबा कहता है लेकिन बाबा के पास तो हमारा पूरा चार्ट होता है। तो अगर कहीं भी हम चतुराई करते हैं आपस में व्यवहार में, बाबा से तो हम कई बार सच्चे रहने की कोशिश करते हैं अगर हम सही चार्ट देते हैं बाबा को तो, और नहीं तो कई बार हम भूल भी जाते हैं जो हमने किया, लेकिन बाबा तो नहीं भूलता है। तो हम झूठ बोलते हैं कई बार अपने को बचाने के लिए, किसी की नाराजगी से बचने के लिए, या फिर अपना नाम खराब ना हो जाए उसके लिए भी, मेरी कमजोरी सामने ना आ जाए उसके लिए भी। कई बार हम अंदर कुछ होते हैं बाहर कुछ होते हैं, ऐसे भी व्यवहार कर जाते हैं कि हम सामने कुछ और बोलते हैं और पीछे कुछ और कहते हैं। चलो हम समझते भी हैं कि इस मनुष्य के अंदर या इस आत्मा के अंदर ये कमी है, उनके सामने तो हम नहीं कह सकते, लेकिन दूसरों के सामने भी हमें क्यों कहना है? क्योंकि बाबा ने हमें पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त रहने के लिए कहा है। तो बाबा की आज्ञा पर चलना, जैसे आज्ञाकारी विशेष जो होते हैं वो दिल पर चढ़े होते हैं, तो जो बाबा की श्रीमत मिली हुई है उस श्रीमत का पालन करना अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रीमत है, क्योंकि वो हमारा टीचर भी है ना, सुप्रीम टीचर है। तो हर बात के लिए हमें शिक्षा मिली हुई है, संकल्प कैसे करने हैं, बोल कैसे बोलने हैं, हमें कर्म में व्यवहार में कैसे आना है। बाबा के आज्ञाकारी हैं तो बाबा के दिल तख्त नशीन है। फिर कई बार सोचते नहीं, बिजनेस में तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, बिना झूठ के तो आज का बिजनेस नहीं चलता है, तो क्या कहेंगे। जो बिजनेस के कायदे हैं उस प्रमाण अगर हम चलते हैं, इसमें पता चलता है कि मेरा विवेक मुझे खाता है, अगर मैंने कुछ भी गलत किया मर्यादा से बाहर जा करके, उसकी लकीर को पार करके, तो मेरा विवेक वो सिग्नल देता है, वो हमें समझ में आ जाता है कि इतना तक सही है, इससे आगे गलत है, तो नहीं जाना चाहिए। और हमें कितनी आवश्यकता है, हमें यहाँ पर कोई करोड़पति अरबपति तो बनना नहीं है। बाबा ने हमें बताया है अविनाशी कमाई में हमें ज्यादा समय लगाना है, ज्यादा शक्ति लगानी है, वो कमाई उतनी ही चाहिए जितनी आवश्यकता है, और आवश्यकता जितना तो बहुत सहज कमा लेते हैं। तो उसके कारण भी हम झूठ का सहारा लें, कहीं फरेब करें, कहीं धोखाधड़ी करें, ये सब बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर हम ऐसा करते हैं, सीधा हमारा योग नहीं लगेगा, इसकी निशानी है। कोशिश करेंगे बाबा को याद करने की, लेकिन वो बोझ बुद्धि को ले आएगा, नीचे ले आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म अवज्ञाएं पाप का बोझ का खाता आत्मा पर चढ़ाती हैं, और वो बाबा के दिल तक से हमें उतार देती हैं। फिर तीसरी बात बाबा को पसंद है, एक बाप दूसरा ना कोई, सर्व संबंध एक बाबा से है, मेरे जीवन का आधार बाबा है, बाबा ही मेरा संसार है, तो हम दिल तख्त नशीन अनुभव करेंगे। भले ही सर्व संबंधों में रहते हैं, सेवाओं में रहते हैं, सब निर्वाह शरीर निर्वाह करते हैं, व्यवहार निर्वाह करते हैं, लेकिन फिर भी मन में किसकी लगन है, एक बाबा की ही लगन है। तो वो बाबा की दुआएं हम अपने में अनुभव करते हैं। बाबा को लगाव चुकाव बिल्कुल पसंद नहीं, न्यारे और प्यारे, सब कुछ करते हुए भी न्यारे, देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ, सभी बातों से न्यारे और बाबा के प्यारे। और जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, ये हमारे लिए सहज हो जाता है कि हम सहज ही सब बातों से न्यारे हो जाते हैं। तो ये अपनी सूक्ष्म चेकिंग है कि कहीं अब तक भी मेरा सूक्ष्म लगाव झुकाव तो नहीं है। बाबा कहता है एक्स्ट्रा में जाना, इनके कुछ विशेषताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इनके गुण या इनका सहयोग देना, स्नेह, इनका ज्ञान सुनाना, कई बातें हैं। हम सब बाबा के विशेष बच्चे हैं, विशेष आत्माएं हैं। कई बार ऐसा होता है लौकिक से तो मोह छूट जाता है, लेकिन अलौकिक में हो जाता है। तो लोहे की जंजीरें तो छोड़ दी, लेकिन बाबा कहते हैं सोने की जंजीरें तो आकर्षण करने वाली होती है ना, तो कई बार वो आकर्षित करती हैं। तो वो भी किसकी देन है, किसने वो विशेषता हमारे अंदर भरी, बाबा देने वाला है ना? हरेक की विशेषता बाबा की देन है, तो उसको देखते हुए भी बाबा याद आए। और भले ही हम बाबा कहता है उसकी खुशबू लो, उस अच्छाई को स्वयं में धारण करो, लेकिन प्रभावित नहीं हो जाओ किसी से भी कि वो आत्मा आपकी बुद्धि को खींचे। तो सदा बुद्धि की लगन एक बाबा के साथ, वो हम दिल तख्त नशीन बाबा के बच्चे हैं। फिर बाबा ने हमें ताजधारी बनाया है, हम सभी विश्व कल्याण की सेवा के ताजधारी हैं। जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, जैसे बाप विश्व का कल्याण करता है, ऐसे बच्चों को भी कल्याण करना है। तो हम सभी ऐसे नहीं कि सिर्फ जो हमारी दादियां हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो निमित्त आत्माएं हैं, वो ही सेवा के ताजधारी हैं। नहीं, जिस दिन से बाबा के पास हमने अलौकिक जन्म लिया, जिस दिल से कहा वो मेरा बाबा है, उस दिन से सेवा का ताज हरेक आत्मा के ऊपर है। हरेक का पार्ट महत्वपूर्ण है, इसीलिए ब्रह्मा को सहस्त्रों बुझाएं दिखाते हैं, क्योंकि सहयोग की निशानी बुझाएं हैं। हम सब तन मन धन से बाबा के कार्य में सहयोगी हैं। और ये ताज जो अभी पहना है, इस ताज से भविष्य में डबल ताजधारी बनने वाले हैं, राजाई का ताज और पवित्रता का ताज, डबल ताज मिलने वाला है। तो हम सेवा करते हैं तीन चार तरह से। सबसे पहली है स्व की सेवा, स्वयं को ज्ञान से संपन्न और संपूर्ण बनाना, ज्ञान योग धारणा, ये तीन विषय स्वयं के लिए हैं। तो धारणाओं में संपन्न बनाना, जो बाबा ने हमें धारणाएं दी हैं, रचयिता रचना का जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के अनुभवी मूरत बनना। सिर्फ ज्ञान सुनने तक नहीं, हमारा ज्ञान सुनने वाला नहीं है, जीवन बनाने वाला है। तो उससे संपन्न बनाने के लिए हमें रोज पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है योग का चार्ट कितना होना चाहिए, उस पर अटेंशन देना। जैसे आज भी बाबा ने कहा, हाँ कल मैंने 3 घंटे योग लगाया, आज तो मेरा योग 2 घंटे ही लगा, मतलब मेरा घाटा हो गया। तो चार्ट कितना होना चाहिए एक दिन का, 8 घंटा तक। तो स्व का पुरुषार्थ, और वो स्व पुरुषार्थ में जब हम संपन्न होते हैं, तो वो हमारा संपन्न स्वरूप दूसरों को भी प्रेरणा देता है, अपने आप सेवा होती है, स्वतः सेवा होती है उससे। फिर दूसरा है, हम विश्व की आत्माओं की जो सेवा करते हैं, उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, ज्यादातर हम उसमें वाचा सेवा करते हैं, तो हम कई तरह के प्रोग्राम रचते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, मेले करते हैं, अनेक तरह के पब्लिक प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम कुछ आत्माओं तक बाबा का संदेश, उन्हें बाबा की पहचान मिले, अपने पिता से वो आत्माएं भी वर्षा लेने के लायक बने, ये हमारा लक्ष्य होता है। और हम यथा योग्य यथा शक्ति सभी, हाँ परिवार में रहते हैं तो अपने परिवार वालों को बाबा के ज्ञान देते हैं, संदेश देते हैं, अपने संबंधियों को, मित्रों को बाबा के घर लाने का प्रयास करते हैं। तो ये सेवा भी हम सभी करते हैं, और इसमें अपना तन और धन दोनों लगाते हैं। धन से भी हम बाबा के सभी बच्चे सहयोगी बनते हैं, क्योंकि अपने तन मन धन से ही हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। और तन तो लगता ही है, जो भी कर्मणा सेवा होती है उसमें हमारे लिए जो भी सेवा के चांस होते हैं वो सब हम करते हैं। यहाँ महायज्ञ में आते हैं, मधुबन में आते हैं, तो भी यहाँ की सेवा भी बाबा कहता है महायज्ञ में सेवा करते हैं तो महापुण्य है उसका, जैसे कुंभ महाकुंभ कहते हैं। तो ये तो विशाल मेला बाबा के घर में लगता है, जब भी हम आते हैं यहाँ तो यहाँ भी हमारा सेवा का पाठ होता है। तो इस तरह से हम यज्ञ सेवा भी करते हैं। और चौथी सेवा बाबा कहता है मनसा सेवा। मनसा सेवा सही अर्थों में हमें विश्व सेवाधारी बनाती है, क्योंकि चाहे हम अपने स्थानों पर रहकर सेवा करते हैं तो भी हम कुछ संख्या में आत्माओं तक पहुंच पाते हैं, पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंचना तो संभव नहीं है। लेकिन मनसा सेवा करना माना एक स्थान पर होते हुए समस्त विश्व की आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वृत्ति के द्वारा सकाश देने की सेवा, वो हम कर सकते हैं। इसको बाबा कहता है वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने की सेवा, लेकिन ये सूक्ष्म सेवा है। और सूक्ष्म सेवा है, देखने में सहज लगती है लेकिन इतनी सहज नहीं है। सबसे कठिन मनसा सेवा है, सबसे सहज कर्मणा सेवा है। कर्मणा सेवा के तो हम सब अभ्यस्त होते हैं, कार्य करने के अभ्यस्त होते हैं। बाबा के घर में भी हम कार्य करते हैं, वो लगभग उसी तरह के होते हैं, तो हम सहज कर लेते हैं उसे। वाचा सेवा उससे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए भी अभ्यास चाहिए। थोड़ा अभ्यास करने के बाद हम वाचा सेवा भी कर पाते हैं। लेकिन मनसा सेवा के लिए जो विशेषता चाहिए वो बाबा कहता है सदा ही हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहे। ये इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान है। जैसे लोग कहते हैं नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन सदा पॉजिटिव सोचो ये इतना आसान नहीं है। फिर मन को एकाग्र करना है मनसा सेवा के लिए, मन की एकाग्रता भी इतनी आसान नहीं है। भले ही हम वर्षों से योग लगाते हैं पर फिर भी मन बाबा की याद में पूरी तरह से लगन में मगन हो जाए, वो स्थिति कितनी होती है, कितना समय होती है। तो जब तक वो स्थिति नहीं है तब तक हम संपूर्ण विश्व की आत्माओं तक जो वाइब्रेशन फैलाना चाहिए वो वाइब्रेशन हम नहीं फैला सकते हैं। लेकिन मनसा सेवा सबसे शक्तिशाली सेवा है। और बाबा कहता है यही अंतिम समय की भी सेवा है, अंत में और कोई सेवा हम नहीं कर पाएंगे। परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आप जा ही नहीं सकेंगे कहीं, ज्ञान सुनाने की मार्जिन ही नहीं होगी। यहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर तक भी मुरली सुनने भी ना आ सकें। चारों तरफ से प्रकृति भी माया भी, बाबा ने हमें अंतिम समय का सारा वर्णन बताया है, पेपर बताया है कि किस तरह का वो अंतिम समय का पेपर होगा। और उस समय जो मुख्य सेवा होगी वो है नजर से निहाल करने की सेवा। उसमें ही आत्माएं सर्व प्राप्तियों का अनुभव एक सेकंड में, एक मिनट में अनुभव करेंगी। इसको मिनट मोटर कहा। तो ये सेवा करने के लिए मन बिल्कुल व्यर्थ संकल्पों से, नेगेटिव संकल्पों से मुक्त होना चाहिए। वो शक्तिशाली स्थिति कैसे बनेगी? जैसे आज हम देखते हैं जितना सूक्ष्म होता है उतना ही शक्तिशाली है। विज्ञान के साधन भी हम देखते हैं जितने सूक्ष्म होते जा रहे हैं उतने ही शक्तिशाली हैं। देखो पहले जमाने में कितना वो कैसेट होते थे, फिर उसके बाद सीडी बनी, MP3 बनी, और आज क्या होता है, एक छोटा सा चिप होता है और उसमें जितना GB है उतना अनलिमिटेड कैपेसिटी है। आप उसमें पहले आप एक वीडियो का अलग होगा, ऑडियो अलग होगा, आज एक में ही वीडियो भी ऑडियो भी आप कितना डेटा भरना चाहो सब भर सकते हैं, कितनी सी चिप है। तो कितनी सूक्ष्म हो है उतना ही शक्तिशाली हो गई। जैसे हम कहते हैं मोबाइल फोन है कितना छोटा है, हाथ में पकड़ करके हम घूमते हैं, पर आज के मोबाइल में सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, मोबाइल फोन आपकी मुट्ठी में है, और अगर इंटरनेट चल रहा है तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में, ऐसे कहेंगे। तो जितना छोटा स्वरूप हुआ उतना ही वो शक्तिशाली हो गया। एक तरह से नहीं, उसे अनेक तरह से हम यूज करते हैं। तो मनसा भी भले हमें दिखाई नहीं देती है, मनसा सेवा हम कर रहे हैं कुछ दिखाई थोड़ी दे रहा है, मेरे वाइब्रेशन वहां तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, पूरी दुनिया में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन कितनी पावरफुल स्थिति है उतना ही वो प्रभाव होता है। जैसे हम कहते हैं 0 वॉट का बल्ब जल रहा है या 100 वॉट का बल्ब जल रहा है या 1000 वॉट का बल्ब जल रहा है, तीनों की लाइट अलग अलग होगी। और एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस की लाइट कैसी होती है, जैसे समुद्र के किनारे लाइट हाउस होते हैं, मीलों तक उसकी रोशनी जाती है जो जहाज को रास्ता दिखाती है। तो हम भी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति वाले होने चाहिए। अगर हम मनसा सेवा करते हैं तब हम पूरे विश्व की आत्माओं तक वो वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो फिर व्यर्थ को समाप्त करना है और नेगेटिव को, व्यर्थ और नेगेटिव को समाप्त करेंगे तभी मन एकाग्र होगा, और उसके लिए चाहिए शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, मनन चिंतन, जिसको बाबा कहता है विचार सागर मंथन। तो जब तक हमने ज्ञान का मंथन नहीं किया, मुरली सुनना से ज्ञान का मंथन नहीं चलेगा। वो सुन लिया हमने, अपना नियम पूरा किया, आज मुरली सुनी, बहुत अच्छी मुरली थी, बाबा ने जो कहा उससे हमें बहुत खुशी मिली, 2 घंटे तक उसका असर रहता है थोड़ा थोड़ा, फिर उसके बाद डिस्चार्ज होना शुरू, व्यवहार में आए, कर्म में आए, एनर्जी यूज करना शुरू करते हैं और डिस्चार्ज हो जाते हैं। आगे के 2 घंटे अगर हमने रिवाइज नहीं किया, उसको मनन नहीं किया, आधे दिन के बाद आप पूरी तरह से डिस्चार्ज, और शाम को पुराने संस्कार पूरी तरह से काम करने लग जाएंगे, क्योंकि जो पावर भरी थी, जिससे कंट्रोल था, वो कंट्रोल खत्म। तो फिर इसीलिए बाबा हमें बार बार अंडरलाइन कराते हैं, कई बार बाबा कहते हैं 2 बार स्नान करना चाहिए, जैसे दुनिया में भी रॉयल लोग होते हैं तो वो 2 बार स्नान करते हैं, तो 2 बार ज्ञान स्नान। आज बड़ी दादी जी के स्मृति दिवस के निमित्त हम सब यहाँ हैं, तो मैं दादी जी के साथ रही हूँ कई वर्षों तक, और मैंने दादी को देखा है और भी दादियों को हम देखते हैं, दादी बड़ी दादी 4 बार मुरली पढ़ती थी, आप सबने सुना भी होगा जब दादी के संस्मरण सुनते हैं, तो हमने देखा कि कितना भी बिजी रहे दादी सेवाओं में, लेकिन मुरली पढ़ना कभी मिस नहीं करेंगे। वो क्लास में मुरली सुनाते थे, उसके बाद शाम को आराम करके उठे सीधा मुरली ही पढ़ेंगे, रात को सोने से पहले मुरली जरूर पढ़ेंगे, पूरी मुरली, ऐसे नहीं एक पेज पढ़ लिया वरदान स्लोगन धारणा सार बस हो गया, नहीं, पूरी पूरी मुरली पढ़ेंगे, कितना भी देरी हो जाए, एक बज जाए चाहे रात का। कई बार हम कहते भी थे कि दादी बहुत देर हो गई है, लेकिन दादी कहती थी नहीं, दादी को मुरली पढ़े बिना नींद नहीं आएगी, और मुरली पढ़ने के बाद एक मिनट में दादी सो जाती थी। तो आप सोचिए, जो चार बार मुरली पड़ेगा, यानी फिर अमृत वेले उठते थे तभी भी मुरली पढ़ते थे, फिर क्लास में सुनाते थे, तो पूरा चार बार। तो जो चार बार मुरली पढ़ेगा उससे पूरी मुरली याद हो जाएगी। अभी भी देखो, अगर हमने एक बार सुनी है तो शायद एक दो पॉइंट याद होगी। अभी मैं आपसे पूछूं बाबा ने आज क्या कहा मुरली में, मुश्किल से एक दो बात बता पाएंगे, लेकिन अगर आपने दूसरी बार पढ़ ली तो एक चौथाई मुरली याद हो जाएगी, तीसरी बार पढ़ ली तो 75% मुरली आपको याद हो जाएगी, और चार बार पढ़ ली तो पूरी मुरली याद है। जो बात मेरी स्मृति में है वही मेरे स्वरूप में आएगी, व्यवहार में आएगी। याद ही नहीं है तो नहीं आ सकती। इसीलिए बाबा कई बार कहता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। जब तक उसे घोटेंगे नहीं तब तक उसका नशा और खुशी भी हमें अनुभव नहीं होगा। दुनिया में भी वो भांग का नशा पीते हैं ना, तो उसको घोटते हैं, जितना ज्यादा घोटते हैं उतना ज्यादा उसका नशा होता है। तो यहां भी शुभ चिंतन के लिए मन में शुभ चिंतन चले, और सारी बातों का आप देखो लौकिक कार्य व्यवहार में रहते हैं, इसका उसका चिंतन, समस्याओं का चिंतन जो भी आती रहती हैं, आए दिन कोई ना कोई परिस्थिति होती है, एक पूरी नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, उसकी बजाय ज्ञान का चिंतन चले, इसके लिए हमें विचार सागर मंथन करना जरूरी है। फिर कई भाई बहने कहते हैं विचार सागर मंथन करने की कोशिश करते हैं लेकिन चलता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? हो सकता है कोशिश करते हैं हम तो रिवाइज तो कर सकते हैं, चलो उसके ऊपर और गहराई से सोचना ये हमारे लिए मुश्किल लगता है, लेकिन बाबा ने क्या कहा उसको रिवाइज तो कर सकते हैं, वो तो आसान है। और आजकल रिवाइज करना कोई मुश्किल नहीं है, आज तो इतने अच्छे अच्छे साधन मिले हैं हम सबको, हाथ में आपके मोबाइल होता है उसमें ही आप आराम से कभी भी मोबाइल में मुरली आती है, कई उसमें ऐसे जैसे व्हाट्सएप चलता है, कई ऐप चलते हैं जिसमें लोगों को मुरली मिल जाती है, तो उसमें ही पढ़ सकते हैं बार बार। और नहीं तो चलो वो नहीं आप रखते हैं तो एक छोटे स्लिप में भी मुख्य पॉइंट नोट करके अपने पॉकेट में डालकर हमने रख दिया, और समय प्रति समय बीच में एक घंटे में दो घंटे में निकाल के उसको रिवाइज कर लिया, तो मन की स्थिति एकदम बदल जाएगी। मानो आप किसी बात में उलझे भी हैं तो भी जैसे ही आपने अपने मुरली की पॉइंट्स को रिवाइज किया तो वो स्मृति में आ गया, जैसे ही स्मृति में आया स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, स्मृति ही नहीं है तो स्थिति बनने का सवाल ही नहीं उठता। बाबा कहते हैं सारा ड्रामा का खेल ही स्मृति विस्मृति का है। आज हम सब गिरे, क्यों गिरे? क्योंकि स्वयं को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, विस्मृति हो गई ना, तभी तो सतो प्रधान से गिरते गिरते यहां पहुंच गए। और वही बाबा जब हमें स्मृति दिलाते हैं तो फिर से चढ़ती कला हो जाती है, फिर से आत्मा 16 कला सतो प्रधान संपूर्ण पवित्र बन जाती है। तो पुरुषार्थ ही सारा स्वयं को स्मृति स्वरूप बनाने का है, और जितना हम स्मृति स्वरूप रहेंगे उतना ही हम बहुत सहज अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे। एकाग्रता बाबा कहता है जिस समय जो स्थिति हम अपनी बनाना चाहें वो हम बना सके। हम योग करने बैठे हैं और योग में हम चाहते हैं बिल्कुल बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव, बिंदु रूप स्थिति का, जो सर्वगुण संपन्न स्थिति है, संपूर्ण पवित्र मेरी अनादि अवस्था है, वो अनुभव मुझे 15 मिनट तक बिल्कुल करना है। तो मेरा मन बिल्कुल 15 मिनट परम धाम में बाबा के साथ उस स्थिति में रहे, ऊपर से नीचे ना आ जाए, इसको एकाग्रता कहते हैं। अभी भट्टी करेंगे ना 5 दिन, तो ऐसा अनुभव करने की कोशिश करना है जिसको बाबा ज्वालामुखी योग कहता है। तो योग अग्नि का रूप लेता है, अग्नि माना वो, अग्नि का मतलब जलने लगेगा, मतलब कुछ गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। कहने में योग अग्नि है, लेकिन उतना ही हम शीतलता का अनुभव करते हैं। पर अग्नि क्यों कहा? क्योंकि उसको उसमें जन्म जन्मांतर के विकर्मों को विनाश करने की शक्ति है। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो भस्म हो जाता है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है। जिस रूप में कोई चीज अग्नि में पड़ेगी, उस रूप में कभी वो वापस आएगी ही नहीं। अगर आपने कोई कठोर चीज डाली है तो वो क्या होता है, आग में सॉफ्ट हो जाती है, और अगर कोई सॉफ्ट चीज डाली है तो वो आग में कठोर हो जाती है। तो आत्मा का स्वरूप परिवर्तन यानी संस्कार परिवर्तन करने की शक्ति ऐसे योग में है, इसीलिए उसको योग अग्नि कहा। नहीं तो हम सालों से योग कर रहे हैं, संस्कार नहीं बदलते हैं, मेहनत कर करके थक जाते हैं, वही के वही संस्कार। संस्कार बदलना है माना पूरी एकाग्रता वाला योग, जो स्थिति बनानी है बिल्कुल, जिसको दुनिया वाले समाधि की स्थिति कहते हैं। बाबा तो हमें समाधि शब्द नहीं कहते हैं, लेकिन उस स्थिति में मन मगन हो जाए, बिल्कुल आए नहीं, नीचे आने की इच्छा ही ना हो, लवलीन हो जाना, जिसे लीन हो जाना दुनिया वालों ने कहा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो वो गलत अर्थ निकाल दिया, लेकिन बिल्कुल बाबा की याद में लवलीन स्थिति का अनुभव। और उस स्थिति में फिर हम किसी भी आत्मा के प्रति जो शुद्ध संकल्प करते हैं उसमें सिद्धि होती है, नहीं पावर होती है। मुझे याद है यहाँ पर अभी जनवरी मास में बिजनेस विंग का कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें एक बहन आई थी बॉम्बे से, कृति, कृति नाम था उसका, और वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत में जब ये सिस्टम शुरू हुआ तो उसमें वो पहला प्रयास था डॉक्टरों का जो सफल रहा, और वो उसका जन्म इस तरह से हुआ, इस संसार में वो टेस्ट ट्यूब बेबी, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, तो लगभग 30-35 साल की उम्र होगी उसकी। तो उसने यहाँ पर स्टेज पर अपनी मनसा शक्ति का प्रदर्शन किया। अब कहेंगे इस दुनिया के अनुसार तो उसका पवित्र विधि से जन्म हुआ, ऐसे ही कहेंगे। तो उसने बहुत सारे यहाँ पर अपनी मनसा शक्ति के एक्सपेरिमेंट दिखाए, तो 2-3 मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगी। कि उसने एक बहन को बुलाया स्टेज पर और कहा कि आप सोचो अपने बारे में, और इस दुनिया में कहाँ आपके जाने की इच्छा है, मन में सोचो, वहाँ आप जाओ, जिससे आपको मिलना है मिलो, बात करना है जो भी, 5 मिनट में आपको देती हूँ, और 5 मिनट में आप सब सोच लो, और फिर मैं आपको बताऊँगी, आपको नहीं बताना है, आपने क्या सोचा वो मैं बताऊँगी। और बिल्कुल उसने सारा उन्होंने सोचा बैठकर, और वो भी सीनियर बहन थी, छोटी बहन नहीं, सीनियर बहन को स्टेज पर बिठाया, और उसने पूरा नोट कर लिया उस दौरान। और फिर जब 5 मिनट पूरे हुए तब उन्होंने कहा है ना कि ये मेरा पेपर मेरे हाथ में है, अब आप बोलो कि आप कहाँ गई। तो उन्होंने सुनाया कि मैं लंदन में गई, तो उन्होंने लिखा था लंदन में गई, फिर लिखा, फिर बताया कि किससे मिली, तो दादी जानकी उस समय लंदन गए हुए थे, अभी भी दादी जानकी लंदन गए हुए हैं, आने वाले हैं 23 तारीख को। तो मैं लंदन गई, दादी जानकी के से मिली वहाँ ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में। तो ये सारा उसने पेपर पर लिख लिया था, तो थॉट रीड कर लिए उन्होंने, पूरा जो विचार चल रहे थे वो विचारों का भी उसने रीडिंग कर लिया। फिर दूसरा उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बल्ब रखा उसने स्टेज पर पॉलिथीन में पैक करके, और उसने कहा कि मैं इसको दृष्टि दूंगी कुछ मिनट और ये बल्ब टूट जाएगा, क्योंकि मैं ये संकल्प दूंगी कि ये टूट जाए। तो वो संकल्प में इतनी पावर है कि ये सिर्फ ऐसे ही पड़ा है बल्ब, लेकिन टूट जाएगा। मतलब हमारे संकल्प कैसे काम करते हैं, तो हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं, वो उसको उसी तरह से टच होता है, माना वैसा ही प्रभाव होता है उसके ऊपर। फिर उसने कहा कि आप सबसे सभा में जो बैठे हैं, मुझे यही सहयोग चाहिए कि आप भी यही संकल्प करो, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टूटने में, क्योंकि सबकी पावर संगठित हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि 2 मिनट भी नहीं लगा और वो बल्ब टुकड़े टुकड़े हो गया, पड़े पड़े ही। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया उसने कि संकल्प ने कैसे काम किया। तो कैसे प्रकृति पर हमारे संकल्प काम करते हैं, इसे बाबा कहते हैं ना, आप पावन बनते हैं तो पूरी प्रकृति पावन बन जाती है, आप तमो प्रधान होते हैं तो पूरी प्रकृति तमो प्रधान हो जाती है। इसको बाबा कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल, हर चीज पर हमारे संकल्प के वाइब्रेशंस का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे कुछ उसने एक्सपेरिमेंट किए और भी थे जो मैं पूरा आपको नहीं सुना रही हूं, लेकिन ये बातें आज विज्ञान भी इस तरह से सिद्ध करता है कि कैसे मन अदृश्य शक्ति है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हमने कई प्रयोग किए अपने जीवन में, जो हम कहते हैं मनसा शक्ति के प्रयोग, अभी तो अपने स्पार्क में भी इसके ऊपर बहुत प्रयोग होते हैं और कई इसके ऊपर बुक्स भी लिखी हुई हैं, आपने पढ़े होंगे। लेकिन प्रैक्टिकल जो हमने अनुभव किए बाबा की सेवाओं के दौरान, तो कई बार स्वयं के ऊपर भी किए, बाबा तो कहता है कि अपनी बीमारी के ऊपर भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरे किसी को हमें सहयोग देना है, किसी आत्मा को बाबा के बनने की प्रेरणा देनी है, किसी निराश में आशा का संचार करना है, किसी को उमंग उत्साह में लाना है, किसी को भाग्य बनाने की प्रेरणा देनी है, दुनिया के किसी भी कोने में वो आत्मा है, वो मनसा साइलेंस पावर में इतनी शक्ति है कि हम कर सकते हैं। लेकिन स्थिति वो होनी चाहिए जो बाबा ने बताया, तभी वो काम करेगी, नहीं तो वो ब्लॉक हो जाएगी। आपके वेव्स तब तक सीधे वहां तक जब जाएंगे जब लाइन क्लियर होगी। तो ऐसे ही एक बार, ऐसे तो बहुत सारे मिसाल हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि एक बार ऐसे ही एक युगल थे, उनको हमने कोर्स कराया और बहुत अच्छे लगन वाले थे, रोज मुरली क्लास सुनते थे, आने लगे, लेकिन उनका जो बेटा था उनको पसंद नहीं था। वो बेटा करीब 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो उसने कई बार अपनी माँ को बोला कि हो सकता है उसको उसके फ्रेंड्स वगैरह कुछ ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कहते होंगे, तो उसने कहा आप नहीं जाओ। तो माता पिता समझे कि इसको इतनी समझ नहीं है, ये अपने हिसाब से बोलता है, तो उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं देते थे और ही समझाते थे उसको। तो जब उसको लगा कि ये मेरे कहने से तो छोड़ने वाले नहीं हैं, तो कई बार बच्चों को ऐसे होता है अंदर में, बहुत इमेच्योर होते हैं ना, तो समझ पूरी इतनी ऐसी समझ नहीं होती है, तो उसने गुस्से में आकर के घर छोड़ दिया, बिना बताए घर छोड़कर वो चला गया। अब स्कूल टाइम तक तो देखा माँ ने आया नहीं घर, उसके बाद नहीं आया तो चिंता होने लगी कि बेटा घर नहीं आया है, रात हो गई घर नहीं आया है, तो उसने सबसे पहले मुझे ही फोन किया कि मेरा बेटा जो है वो घर छोड़कर चला गया है, तो मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो मैंने तो उसको बोला बाबा को याद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर उसने कहा कि दीदी मेरा तो योग नहीं लगता है, मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, आप मेरे लिए योग लगा दो। ऐसे ही होता है कई बार, जब कोई ऐसी स्थिति होती है तो, परिस्थिति होती है तो योग ही टूट जाए। और वो नए थे बिल्कुल, इतना योग का अभ्यास भी नहीं था। तो फिर मैंने उनको सांत्वना दी, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए योग लगाऊंगी। और उसी रात को मैंने एक घंटा खास उसके लिए योग किया। और मैंने कहा बाबा को, बाबा जहाँ भी हैं वो सही सलामत उसको इतनी सद्बुद्धि दो कि वो वापस अपने घर आ जाए। और ऐसा ही हुआ। वो पूरी रात तो उनको कुछ पता नहीं चला, बहुत ढूंढा उन्होंने, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई, लेकिन सुबह ही वो बेटे का फोन आ गया उनके पास कि मैं जयपुर में हूँ। और जयपुर में उनके कोई रिलेटिव रहते थे, उनके घर वो चला गया और कहा मैं यहाँ हूँ और आपको, आप मेरी चिंता मत करो और मैं एक दो दिन में आ जाऊँगा। तो अपने आप ही आगे से उसने फोन किया उनको। तो बाबा कैसे मतलब टच करता है, जैसे हमने उस तरह से उनको वाइब्रेशन दिए, उसको टच हुआ और उसने अपने आप वो सद्बुद्धि उसको आई कि अपने घर में कि मेरी माँ बहुत परेशान होगी, मुझे उनको बता देना है। ऐसे ही कई पेशेंट्स के ऊपर, मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, हम देखते थे कई बार लोग ऐसे बीमार हैं कि जीने और मरने के बीच में हैं, और अगर हम उन्हें कुछ सहयोग दे सकते हैं तो कई बार हमने उनके लिए योग लगाया। मैं बहुत डिटेल में, विस्तार में वो अभी इंसिडेंट्स नहीं बताऊंगी, लेकिन जिन आत्माओं के लिए भी उस तरह से हमने योग किया, हमने देखा उनको मदद मिली और वो अपनी उस गंभीर परिस्थिति से, बीमारी से बाहर आ गए। खुद के लिए भी जब भी योग किया उसमें भी सफलता मिली। लेकिन वही कि जितना एकाग्रता वाली हमारी मानसिक स्थिति होगी, जितना बाबा से उतना लगन में मगन स्थिति वाला योग हमारा होगा, उतना पावरफुल हमारी मनसा होगी। जितना व्यर्थ और नेगेटिव से फ्री होगी, उतना ही हम अच्छी तरह से ये सेवा कर सकेंगे और सारे विश्व की आत्माओं को हम विशेष रूप से सकाश दे सकते हैं। और बाबा कई बार हमें कहते हैं आप विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज आत्माएं हो। तो कहीं भी कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, हर साल अब ऐसा कोई ना कोई बड़ा रिहर्सल होता ही है प्रकृति का। तो उसमें हजारों लाखों लोग मरते हैं, और मरने वालों की तो छोड़ो, लेकिन जो उससे दुखी हो जाते हैं, जिनको, जिनका बहुत नुकसान हो जाता है, वो आत्माएं भी कोई कम अशांत नहीं होती हैं। उन सबको उस समय सहयोग देना, अपने शांति के वाइब्रेशंस द्वारा, शक्ति के वाइब्रेशंस द्वारा, शुभ भावना के वाइब्रेशंस द्वारा, हम जहां भी रहते हैं, भले हम उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते, जो पहुंच सकते हैं अपने भाई बहने वो पहुंचते भी हैं, वो भी सहयोग देते हैं, लेकिन कम से कम हम सभी वो मनसा सहयोग तो अवश्य दे सकते हैं। तो वो हमें अभी से ये सेवा का अभ्यास करते रहना है। और उसके लिए हमें बाबा ने ये जो तीन विशेष स्वमान दिए हैं, तिलकधारी, रक्तनशीन और ताजधारी बन करके रहना है। ओम शांति।
संगत छा।